आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस के अवसर पर जूनागढ़ जिले के सासनगिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सातवीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने जूनागढ़ में वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला भी रखी और 16वीं एशियाई शेर आबादी अनुमान 2025 और कोयम्बटूर में मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन का अनावरण किया। पेश है हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जूनागढ़ में वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी और 16वीं एशियाई शेरों की जनगणना 2025 का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कोयम्बटूर में मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन केंद्र का भी उद्घाटन किया। बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने गिर राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी का आनंद लिया। प्रधानमंत्री ने वन्य जीवों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु फील्ड स्टाफ के लिए पेट्रोलिंग बाइक को भी हरी झंडी दिखाई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने गिर के जंगलों में जारी सामूहिक संरक्षण प्रयासों की सराहना की। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दृष्टिबाधित लोगों को न्यायिक सेवाओं में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की एक पीठ ने 6 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। इस फैसले की घोषणा करते हुए न्यायाधीश महादेवन ने कहा है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के साथ न्यायिक सेवाओं में भर्ती के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मूलभूत समानता सुनिश्चित करने के महत्व का उल्लेख किया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 2025-26 सत्र से 4 वर्षीय शास्त्रीय यूजी और 1 दिवसीय 1 वर्षीय आचार्य पीजी पाठ्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शास्त्रीय स्नातक, शास्त्रीय शोध और आचार्य की उपलब्धियां सेमेस्टर पूरे करने के आधार पर दी जाएंगी। 4 वर्षीय शास्त्री में सभी सेमेस्टर्स में मेजर, माइनर, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, बौद्ध दर्शन, कश्मीर, शैव दर्शन, धर्मशास्त्र, अद्वैत वेदांत, पुराण इतिहास, पाली प्राकृत इत्यादि विषयों के साथ आधुनिक विषय, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, हिंदी आदि के साथ साथ कौशल विकास विषयों की भी पढ़ाई करनी होगी। पाठ्यक्रम में सभी छात्रों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है, जिससे छात्रों को रोजगार के उचित माध्यम प्राप्त हो सके। भोपाल के बड़े तालाब स्थित मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में आज से 42वीं नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम 4 बजे इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। इस प्रतियोगिता में 23 राज्यों के लगभग 500 प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 14 इवेंट्स होंगे। सभी फाइनल्स 7 मार्च को संपन्न होंगे।
वाटर स्पोर्ट्स का एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है भोपाल का बड़ा तालाब, और ये प्रसन्नता की बात है कि 3 मार्च से 7 मार्च तक सीनियर नेशनल रोइंग यहाँ पर हो रही है कॉम्पिटिशन, और उसमें पूरे देश की टीम आएंगी और लगभग 500 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये भोपाल के लिए भी बड़ी बात है, मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात है, और पूरे देश के खिलाड़ियों का हम स्वागत करते हैं। और भोपाल का तालाब जो कि विश्व के मानचित्र पर हर स्तर पर दर्ज हो रहा है, मुझे लगता है इस प्रतियोगिता के बाद और उसमें उसकी ख्याति भी बढ़ेगी और ये प्रतियोगिता सुगमता के साथ होगी।
प्रदेश में मार्च के पहले सप्ताह में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिम उत्तर भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और हवाओं की दिशा बदलने की वजह से ऐसा हो रहा है। प्रदेश में मार्च महीने में तेज गर्मी और लू, बादल और हल्की बारिश वाला मौसम रहता है। इस बार मार्च के पहले ही दिन शनिवार को मुरैना में ओले गिरे, जबकि दूसरे दिन रविवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार पहले सप्ताह में बादल और बूंदाबांदी वाला मौसम रहेगा, लेकिन चौथे सप्ताह से हीट वेव यानी लू चलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी के जवाहर नवोदय विद्यालय बड़वारा में ग्रीन स्कूल जागरूकता अभियान संपन्न हुआ। बालाघाट जिले में एडिप और वयोवृद्ध योजना के तहत 2,452 दिव्यांगों और वृद्धजनों को 18 तरह के 2,319 सहायक उपकरण प्रदान किए गए। निवाड़ी जिले की ओरछा में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लगभग 2 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।